कृष्ण भक्ति काव्य। मध्यकालीन काव्यधारा में कृष्ण काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय धर्म साधना में कृष्ण का विलक्षण व्यक्तित्व रहा है, साथ ही पुराणों में पर्याप्त कथाओं का केंद्र होने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में मानकर उनकी विविध क्रियाकलापों का वर्णन भागवत पुराण तथा महाभारत में प्रमुख रूप से किया गया है। महाभारत में योगेश्वर कृष्ण का राजनीति विशारद महान योद्धा के रूप में चित्रण है, जबकि भागवत पुराण में श्री कृष्ण की रासलीला एवं बाललीला का चित्रण हुआ है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि मध्यकाल के कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की बाललीलाओं, प्रणय लीलाओं तथा अन्य माधुर्य भाव युक्त क्रीड़ाओं का चित्रण तो किया है, किंतु गीता का उपदेश देने वाले नीति मर्मज्ञ कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर कोई काव्य ग्रंथ इस काल में नहीं लिखा गया। कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य के आधार पर ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत माने जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम अश्वघोष के बुद्धचरित में कृष्ण लीला का उल्लेख है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण प्राकृत भाषा में हाल कवि द्वारा रचित गाथा सत्सई यानी गाथा सप्तशती में किया गया है। राधा का उल्लेख भागवत पुराण में रंच मात्र नहीं है, अपितु उनके व्यक्तित्व का विशद निरूपण सर्वप्रथम ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। संस्कृत कवि जयदेव ने मधुर संगीतात्मक पदावली में गीत गोविंद नामक ग्रंथ में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान कर कृष्ण काव्य को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय मैथिल कोकिल विद्यापति को है, जिन्होंने गीत गोविंद का जयदेव का अनुसरण करते हुए सरस मधुर शब्दावली विद्यापति पदावली की रचना की, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं के मादक चित्र अंकित किए गए हैं। विद्यापति के उपरांत कृष्ण काव्य को दृढ़तर आयामों पर स्थापित करने का पूरा श्रेय अष्टछाप के कवियों को हो। इन कवियों में सर्वप्रमुख हैं सूरदास, जिन्होंने भागवत पुराण का आधार ग्रहण कर कृष्ण की बाल लीला एवं प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण करते हुए सुरसागर साहित्य लहरी एवं सुर सारावली की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी ने 1,25,000 पदों की रचना की थी, किंतु अब तक केवल 4,000-5,000 पद ही प्राप्त होते हैं। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवि थे कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। सूरदास के साथ साथ नंददास अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण पद के अधिकारी हैं। कुंभनदास का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। कुछ पद राग कल्पद्रुम राग रत्न सागर में संकलित हैं। परमानंद दास की रचनाओं का संकलन परमानंद सागर तथा परमानंद के पद नाम से हुआ है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास और नंददास के बाद इन्हीं का स्थान काफी श्रेष्ठों की दृष्टि से है। कृष्णदास का भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, किंतु इनके शताधिक पद उपलब्ध हैं। नंददास अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे शास्त्रज्ञ विद्वान काव्य मर्मज्ञ थे। उन्होंने विविध विषयों को लेकर काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख है अनेकार्थ मंजरी, रसमंजरी, सुदामाचरित, रुक्मिणी मंगल, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली आदि। नंददास के काव्यत्व को प्रकट करने वाली एक उक्ति प्राय कही जाती है, इनोटेड कामा, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इनोटेड कामा बंद। यह उक्ति नंददास के काव्यत्व की उत्कृष्टता को पूर्णतः व्यक्त कर देती है। इनके अतिरिक्त गोविंद दास के भी फुटकल पद प्राप्त होते हैं तथा चतुर्भुज दास एवं छीत स्वामी के भी स्वतंत्र ग्रंथ न मिलकर फुटकल पद ही प्राप्त होते हैं, जो इन्होंने कीर्तन के लिए रचे थे। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त राधा वल्लभी संप्रदाय के गोस्वामी हित हरिवंश, गौणीय संप्रदाय के गदाधर भट्ट तथा हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास ने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की है। स्वामी हरिदास प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, अतः उनकी कविता में काव्य और संगीत का अद्भुत मिश्रण प्राप्त होता है। इनकी दो रचनाएं उपलब्ध होती हैं, सिद्धांत के पद और कीलीमाल। इस काल के अन्य कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई तथा रसखानकर भी नाम लिया जाता है। मीरा ने स्फुट पदों की रचना की, जबकि रसखान ने सुजान रसखान, प्रेम वाटका, दान लीला, अष्टयाम की रचना की है। इसी परंपरा की एक और प्रसिद्ध कवि नरोत्तम दास हुए, जिन्होंने सुदामाचरित की रचना की। कृष्ण काव्य परंपरा का विकास रीतिकाल एवं आधुनिक काल में भी निरंतर होता रहा। रीतिकाल के सभी कवियों ने एवं आधुनिक काल के ब्रजभाषा कवियों ने कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर उनके काव्य ग्रंथ लिखे। कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय। संप्रदाय का नाम प्रवर्तक आचार्य कृष्ण का स्वरूप। पहला वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, पूर्णानंद, परब्रह्म, पुरुषोत्तम। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, राधा ही प्रमुख हैं, श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। हरिदास निरंजनी, हरिदास संप्रदाय यानी सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, निकुंज बिहारी कृष्ण। गौणीय संप्रदाय यानी चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण। बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य का दार्शनिक पंथ शुद्धाद्वैत है। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ है पोषण और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान का अनुग्रह या कृपा कोई पुष्टि कहा जाता है। जैसे बिल्ली का या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भक्ति के यद्यपि तीन मार्ग हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग, तथापि वल्लभाचार्य जी का बल पुष्टि मार्ग पर ही है। पुष्टि मार्ग के पथिक किसी लौकिक साधना का आश्रय नहीं लेते। भगवान के अनुग्रह पर ही विशेष बल देने वाला यह मार्ग ही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। वल्लभाचार्य ने भक्तों को चार भेद बताए हैं। पहला प्रवाही पुष्ट भक्त, दूसरा मर्यादा पुष्ट भक्त, तीसरा पुष्टि पुष्ट भक्त, शुद्ध पुष्ट भक्त। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुराग भक्ति, इसे तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है तथा ईश्वर की कृपा से भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का शमन हो जाता है। इस भक्ति के तीन फल हैं, रसरूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना और प्राकृत शरीर से मुक्त होकर वैकुंठ आदि लोकों में आनंद भोग करना। वल्लभाचार्य जी के लिखे ग्रंथ हैं, पहला पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा अणुभाष्य, तीसरा श्रीमद भागवत सुष्फटीका तथा चौथा तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य वे पूरा नहीं कर पाए थे, जिससे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूर्ण किया। अष्टछाप, वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले वे आठ कवि जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अष्ट सखा या अष्टछाप के नाम से जाने गए। इन आठ भक्त कवियों में चार वल्लभाचार्य के शिष्य और शेष चार गोस्वामी विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के चार शिष्यों के नाम हैं कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। गोस्वामी विठलन के चार शिष्यों के नाम हैं गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास। ये आठों भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे, इसी मान्यता के कारण उन्हें अष्ट सखा कहा जाता है। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई, तब ये आठों सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा विधि इस प्रकार है, मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा हुई थी। कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा जिन ग्रंथों में है उनके नाम है, पहला 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, दूसरा 252 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ, तीसरा भक्तमान नाभादास, चौथा भाव प्रकाश हरिराय, पांचवा वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी माना गया है। इनका नाम नियमानंद था। इनका जन्म दक्षिण में हुआ था। इनकी कर्मभूमि ब्रजमंडल था। इनके चार शिष्य थे, जिनमें प्रमुख थे श्रीनिवासाचार्य, जिन्होंने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा। इनके अन्य शिष्यों के नाम हैं औदुम्बराचार्य, गौरमुखाचार्य, लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य के ग्रंथ हैं वेदांत, पारिजात सौरभ, दश श्लोकी, श्रीकृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पवल्ली। निम्बार्क के सिद्धांत को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत पर राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया। भक्ति के पांच रूपों में दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राजस्थान के सलीमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, इस संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी ने 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया। इसे प्रेम को ही भक्ति का मूल माना गया है। प्रेम को ही परापर तत्व मानकर उसे रस रूप कृष्ण से अभिन्न माना है। इससे मुक्ति की कामना नहीं है। राधा कृष्ण नित्य प्यारी और जीवात्मा सखी भाव है, से उनका विहार दर्शन कर परम सुख को प्राप्त करती है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर उनकी उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा के विग्रह नहीं होता, अपितु वाम पार्श्व में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। इस संप्रदाय में तिलक भाल से त्रिकुटी तक रहता है, बीच में काली बिंदी रहती है जो राधा का प्रतीक है। वृंदावन में इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। हित हरिवंश, दामोदर दास, हरि राम व्यास, चतुर्भुजदास, ध्रुवदास, नेहि सागर दास इस संप्रदाय के प्रमुख कोई हैं। इनमें से ध्रुवदास ने 42 ग्रंथ लिखे हैं। कृष्ण भक्त कवि एवं उनकी कृतियाँ। कवि का नाम, जन्म मृत्यु, कृति का नाम सूरदास, जन्म 1478, मृत्यु 1583 ईस्वी। सुरसागर साहित्य लहरी सुर सरावली। कुमंदास 1468 1583 ईस्वी। 186 पद संग्रह में संकलित। परमानंद दास 1493 ईस्वी, 835 पद परमानंद सागर परमानंद के पद। कृष्णदास 1496 से 1578 ईस्वी, जुगलमान चरित्र भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण। नंददास 1533 से 1583 ईस्वी, अनेकार्थ मंजरी रसमंजरी मान मंजरी रूप मंजरी विरह मंजरी प्रेम बारह खड़ी श्याम सगाई ममर गीत रस पंचाध्यायी सिद्धांत पंचाध्यायी गोवर्धन लीला नंददास पदावली। गोविंद स्वामी 1505 से 1550 ईस्वी, 252 पद गोविंद स्वामी के पद में संकलित। छीत स्वामी 1515 से 1550 ईस्वी, 200 पद पदावली में संकलित। चतुर्भुजदास 1530 से 1550 ईस्वी, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह कीर्तनावली दान लीला। श्री भट्ट रचनाकाल 1595 से युगल शतक। हरिव्यास देव महावाणी। परशुराम देव परशुराम सागर हित हरिवंश 1502 ईस्वी हित 84। हरिराम व्यास 1492 ईस्वी व्यासवाणी। चतुर्भुजदास राधावल्लभ द्वादश यश। ध्रुवदास 1573 से 1643 ईस्वी 42 ग्रंथ। ब्रजलीला हित श्रृंगार लीला रंग विनोद लीला दान लीला मान लीला रहस्य मंजरी लीला सुख मंजरी लीला सिद्धांत विचार लीला आदि। स्वामी हरिदास 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी सिद्धांत के पद केलीमाल। बिहारीदास बिहारीदास जी की वाणी। राम राय 1503 ईस्वी आदिवाणी गीत गोविंद भाष्य। चंद्रगोपाल 1515 ईस्वी चंद्र चौरासी अष्टयाम सेवासुद। गौरांग अष्टयाम ऋतु विहार राधा विरह। माधवदास माधुरी 1618 1653 ईस्वी केली माधुरी वंशीवट माधुरी वृंदावन माधुरी। भगवत मुदित वृंदावन शतक रसिक अनन्यमाल। मीराबाई 1504 से 1563 ईस्वी स्फुट पद। रसखान 1533 से 1618 ईस्वी सुजान रसखान। हरिदासी संप्रदाय यानी सखी संप्रदाय, इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया जो अपने समय के प्रमुख संगीतज्ञ भी थे। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निजवत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके रचयिता किशोरदास है। स्वामी हरिदास के शिष्यों में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का नाम भी गिना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्वामी हरिदास का समय 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी माना है। इनके ग्रंथों के नाम सिद्धांत के पद और केलीमाल। स्वामी हरिदास के उपास्य देव नित्य निकुंज बिहारी हैं। केलीमाल उनकी रसमयी रचना है जिसमें राधा कृष्ण के सौंदर्य के अनंत चित्र हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों में स्वामी हरिदास जगन्नाथ स्वामी श्री ठल विपुल बिहारीदास नागरीदास के नाम गिने जाते हैं। चैतन्य संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य बंगाल के नवदीप नामक स्थान के निवासी थे। इस संप्रदाय को गौणीय संप्रदाय भी कहा जाता है तथा इस मत के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद की संज्ञा दी गई है। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति भावना के आधार बिंदु थे प्रेम ममता और भावुकता। इनकी मान्यता है कि श्री कृष्ण परम तत्व है। जीव ईश्वर विमुख होने पर बंधनग्रस्त होता है तथा ईश्वर कृपा से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का साधन है भक्ति जिसे वे 5 प्रकार से मानते हैं शांत दास्य सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य। संप्रदाय में परकीय भाव से रस का उल्लास माना गया और उपपति भाव को स्वीकृत प्रदान की गई है। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में प्रसिद्ध है कि वे जयदेव विद्यापति द्वारा रचित राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं गाते हुए नृत्य करते करते भाव विवकर रोने लगते थे और भक्ति भावना में लीन होकर प्राय मूर्छित तक हो जाते थे। गौण देश में प्रचलित होने के कारण इस संप्रदाय को गौणीय संप्रदाय भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास। सूरदास के जीवन वृत्ति के लिए बहिर साक्ष्य के रूप में भक्तमाल नाभादास 84वें श्रवण की वार्ता गोकुलनाथ और बल्लव दिग्विजय यदुनाथ का आधार लिया गया है। 84वें श्रवण की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत परिवार ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास के महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट 1509 से 10 ईस्वी में हुई थी और तब से वे वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर पारसोली गाँव में रहने लगे थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी तथा निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। वे जन्मान थे या बाद में अंधे वेश विषय में विवाद है। उनके निधन पर गोसाई विठल नाथ ने कहा था इनोटेड कहा पुष्टि मारक को जहाज जात है सो जाको कछु ले न हो सो ले इनोटेड कहा वर्धन पर्वत और श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने 1519 ईस्वी में करवा दी थी। इसी मंदिर में कीर्तन सेवा सूरदास को वल्लभाचार्य ने सौंपी थी। सूरदास के तीन रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के एक पद में सुर ने स्वीकार किया कि वे पृथ्वीराज अशोक के रचयिता चंद्रवरदाई के वंशज थे। स्कूल में हरिचंद के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। सूरदास पहले विनय और दास भाग पद दिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के आगे उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरसागरी कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है, जिसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टकूट पद संकलित हैं। सूरदास ब्रजभाषा के पहले सशक्त कवि हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों को की श्रृंगार वात्सल संबंधी उक्तियाँ सूरदास की जूठी सी जान पड़ती हैं। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए कहा है कि सिंगर नेटवर्क का सूरसागर किसी चली जाती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कम विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूरसागर में उपलब्ध दृष्टकूट वाले पद भी विद्यापति का ही अनुसरण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का यूनाइटेड का मापन। वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूरदास की दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं, इसीलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर जहाँ की अन्यत्र नहीं मिलती। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। सूर भी यही मानते हैं। जहाँ पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा कृपा करें, सुर पतीत तरि जाए तनक से, जे प्रभु नेक दरें। अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक है। सूर की भक्ति सखा वायु और सख्य भाव की भक्ति है। सूर की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य भाव मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का वह स्वरूप उपलब्ध होता है जिनमें हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है। भ्रमर गीत सूर सागर का सर्वाधिक परमस्पर्शी वह दग्धपूर्ण अंश है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरणीय है। यह एक सुंदर उपालम्ब काव्य है जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। इसमें सगुण उपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति एवं भावना के आधार पर किया गया है, तर्क पद्धति पर नहीं। भ्रमर गीत के कुछ प्रसिद्ध पद हैं। पहला, निर्गुण कौन देश को वासी। दूसरा, प्रीति करें कि ने घर छूरी। तीसरा, उड़के माखन चोर अड़े। चौथे, अखियां हरि दर्शन की भूखी। पांचवा, काहे को गोपीनाथ कहावत। छठा, संदेशो देव की सो कहियो। सातवा, विलग जान मनहो उधो प्यारे। आठवां, गोकुल सबे गोपाल उपासी। नौवां, आयो घोष बड़ो प्योपारी। दसवां, देखियत कालिन्य अधिकारी। सूर्य नवीन प्रसंगों की जो उद्भावना की वह उनकी मौलिक विशेषता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रसंगोद्भावनाओं करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला एवं प्रेम लीला के भीतर ऐसे अनेक छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य जैसा समर्थ कवि कर सकता था। भ्रमर गीत के अंतर्गत सूरदास ने प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचन द्वारा कराई है। नंददास। नंददास की गणना अष्टाव के कवियों में की जाती है। इन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टाव अपना शिष्य बनाकर शामिल किया था। नंददास जी के बारे में जो विवरण है 252 श्रवण की वार्ता में है उसे शुक्ल जी ठीक नहीं मानते। वार्ता ग्रंथ में इन्हें प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है, जो नितान गलत सिद्ध हो चुका है। संभवतः वल्लभ संप्रदाय को महिमा मंडित करने हेतु वार्ता ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में शुकर क्षेत्र निसोरो के रामपुर गांव में हुआ था तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में मानसिक गंगा के तट पर हुई। गोस्वामी विट्ठलनाथ पुष्टि मार्ग में दीक्षा लेने पर उनका जीवन ही बदल गया था। सूरदास के संपर्क में आकर और उनकी भक्ति भावना देखकर उन्होंने उनका शास्त्र में उपभंग हुआ। ब्रजभाषा कवि में सूरदास के उपरांत नंददास सर्वाधिक प्रभावशाली कवि माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके द्वारा लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ हैं अनेकार्थक मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम भारा खड़ी, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। अनेकार्थक मंजरी और मान मंजरी दोनों ही शब्दों के पर्याय कोश हैं। मान मंजरी चमत्कार प्रधान रचना है। छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची और दूसरी पंक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूति द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। यह उनके प्रकांड पांडित्य का बोधक ग्रंथ है। विरह मंजरी में कृष्ण के विरह में एक ब्रजवासी की विरह दशा का भावात्मक चित्रण है। रूप मंजरी को प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना गया है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी तरणन दास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें कवि ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। वियुक्त आत्मा रामलीला रासलीला के माध्यम से रसरूप परमात्मा सम्मिलन को व्याकुल है, प्रयत्नशील है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यत्व को देखकर ही नंददास के विषय में यह कहा गया है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। इसमें कविवर नंददास ने उद्धव गोपी संवाद और गोपियों की विरह दशा का निरूपण किया है। यह उनके दार्शनिक विचारों, परिपक्व ज्ञान एवं विवेक बुद्धि के साथ साथ भक्ति भावना का भी परिचायक है। सिद्धांत पंचाध्याय में कृष्ण के लिए रासलीलाओं की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन वेणु गोपी रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। रासलीला को उन्होंने पारलौकिक एवं आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है। नंददास की भाषा कवित्व शक्ति शब्द चयन की योग्यता विद्वत्ता उत्कृष्ट कोटि की है। भ्रमर गीत परंपरा अब उस काव्य के लिए रूढ़ हो गया जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। भ्रमर गीत का तात्पर्य उस उपालंब काव्य से जिसमें नायक की निष्ठुरता और लंपटता के साथ साथ नायिका के मुख व्यथा वीरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका के उपालंबों का चित्रण किया जाता है। साहित्य में भ्रमर रसलोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। वह व्यभिचारी है जो किसी एक फूल का रसमान करने तक सीमित नहीं रहता, अपितु विविध पुष्पों का रसास्वादन करता है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके दशम स्कंद में 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और गोपियां वीरा विकल हो गई हैं। कृष्ण मथुरा के लोक हितकारी कार्य में व्यस्त थे, किंतु उन्हें ब्रज की गोपियों की याद सताती रही थी। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजा। वहां गोपियों के साथ उनका वार्तालाप हुआ, तभी एक भ्रमर वहां उड़ता हुआ आ गया। गोपियों ने इस भ्रमर को प्रतीक बनाकर नियुक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण का जो व्यंग किया वह उपालंब दिए, उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना गया। भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन तथा ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। ब्रजभाषा काव्य में भ्रमर गीत परंपरा के कई अंत ग्रंथ उपलब्ध हैं। विद्वान उस परंपरा का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों से मानते हैं, किंतु विधिवत रूप में भ्रमर गीत परंपरा सूरदास से ही प्रारंभ हुई। भ्रमर गीत परंपरा के कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं। रचना रचयिता प्रमुख विशेषताएं। भ्रमर गीत सूरदास भागवत के दशम स्कंध पर आधारित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के इस भाग को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। सूर की गोपियां भावुक अधिक हैं, तर्कशील कम। भंवर गीत नंददास इसमें दार्शनिकता का पुट है, गोपियां तर्कशील अधिक हैं। ग्रंथ का बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। भ्रमरदूत स्वतः नारायण कविरत्न वात्सल्य वियोग का काव्य, योगीन समस्याओं का चित्रण, माता यशोदा के भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। स्वदेश प्रेम राष्ट्रीयता स्वदेश इच्छा का उल्लेख। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध राधा लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित हैं। राधा की परोपकारिता विश्व बंधुत्व लोक कल्याण वृत्ति को चित्रित किया गया है। उद्धव शतक जगन्नाथदास रत्नाकर भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतिकालीन कलेवर का समन्वय। भाषा में चित्रोपमत्ता अनुभाव निबंधन उक्ति चातुर वर्णन कौशल अद्वितीय। कृष्ण भक्ति धारा के फुटकर कवि मीरा का जन्म 1504 ईस्वी तथा मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। उनका जन्म मेड़ता के समीप प्रति गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीरा की माता का निधन बचपन में ही हो गया था, अतः वे मेड़ता में राव दूदा के पास रहीं, जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ और दुर्भाग्यवश वे 7 वर्ष बाद ही विधवा हो गई। विद्यतकालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुए परिणाम तो राज परिवार में उन्हें विरोध झेलना पड़ा। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में भक्ति में व्यतीत करने लगे। राणा संघा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी, पर गिरधर गोपाल के प्रति मीरा की भक्ति भावना अभी चल रही। बाद में मीरा के चचेरे भाई जयमल ने उन्हें मेड़ता बुला लिया, किंतु वहां भी युद्ध के कारण टिक नहीं पाई और पुष्कर होती वृंदावन पहुंची, जहां उनकी भेंट कृष्ण भक्त जीव गुस्सा मिश हुई। तत्पश्चात वे द्वारका चली गई और रणछोड़ जी के मंदिर में उन्होंने शेष जीवन बिताया। मीरा की रचना स्फुट पद ही प्राप्त है, जो वर्तमान मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हुई है। उनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग है, जिससे गुजराती का भी पुट है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। वे अपने श्रीदेव कृष्ण को प्रियतम के रूप में मानती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का स्वामी अनिवार्य, जिसे शुक्ल जी की सिफियों का प्रभाव मानते हैं। मीराबाई की गणना भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है। इनका गुणगान नावादास, ध्रुवदास, व्यास, मरुकदास ने भी किया है। मेरा रचना में उल्लेखनीय है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सुरोट के पद। शुक्ल जी ने एक जनश्रुति के बारे में लिखा भी है कि मीरा ने एक बार तुलसी को लिखा कि मेरे परिवारजन मुझे साधु संगति में भजन करने से रोकते हैं, अतः मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसी ने उन्हें विनय पत्रिका का यह पत्र लिखकर भेजा था, जाके प्रिय नन राम वैदेही तजिए ताहे कोटि परिसम यद्यपि परम स्नेह। शुक्ल जी इस घटना को कल्पित ही मानते हैं। मीराबाई के दो पद बहुत प्रसिद्ध हैं, बसो मेरे नन में नंदलाल मोहनी मूरत सामली सूरत नैना वसे रसाल। दूसरा, विरहनी बामरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई। रसखान, हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 श्रवण की वार्ता में उनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। डॉक्टर नगेंद्र रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में स्वीकार किया है। पहले ये दिल्ली में रहते थे, बाद में ये गोवर्धन धाम आ गए। मूल गोसाई चरित में उल्लेख है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरित मानस और प्रथम रसखान को ही सुनाया था। प्रेमवाट के रसखान की अंतिम कृति है, जिसमें रचना 1614 ईस्वी में हुई। इसे कुछ समय बाद 1628 ईस्वी में रसखान का देहावसान हो गया। रसखान की दो कृतियां उपलब्ध होती हैं, प्रेमवाट के और दानलीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैये, 17 कविता, 12 दोहे और 4 सोटे संकलित हैं। अष्टयाम नामक उनकी एक कृति और मिली, जिसमें कई दोहों में श्रीकृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है। प्रेमवाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। इस रचना में 53 दोहे हैं। दानलीला केवल 11 दोहों की छोटी सी कृति, जिसमें राधा कृष्ण संवाद है। रसखान ब्रजभाषा के मर्मज्ञ एवं सशक्त कवि हैं। प्रेम तत्व के निरूपण में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। कृष्ण के रूप में मुग्ध एवं राधा गोपियों की मनोहर स्तुति का मनोरम चित्रण उन्होंने किया है। उनके काव्य में कृष्ण के बाल सुंदर का भी चित्रण हुआ है। श्रृंगार एवं वात्सल्य उनके काव्य के प्रमुख रस हैं। सवैये, कवित्व, दोहा, छंद उन्हें प्रिय हैं। उनका प्रेम स्वच्छंद प्रेम है, किंतु उसे सूफिया के प्रेम का अनुकरण नहीं है। ब्रजभूमि के प्रति उनका अनुराग निर्मल स्वयं में प्रकट होता है। मानस हो तो वही रसखान, बसो गुरु ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इनोटेड कामापन। इस प्रकार कृष्ण के रूप का मनोहर चित्र उनके काव्य में हुआ। कृष्ण की लकुटी और कमरिया उन्हें इतनी प्रिय है कि वे इस पर तीनों लोकों का राज त्याग करने को तत्पर हैं। या लकुटी और कमरिया पर राज त्योहपुर की तज डारो, उनकी दो प्रसिद्ध सवैयों की पंक्तियों यहाँ उद्धृत हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की मार गहे पहिरोंगो। दूसरा, शीश महेश गणेश दिनेश सरेसहु जाहि निरंतर ध्यावन। तीसरा, तुरि भरे अति शोभित श्यामाजु वैसी बने सिर सुंदर चोटी। रसखान की भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित ब्रजभाषा, जिसमें माधुर्य और प्रसाद गुणों के कारण सरसता एवं सजीवता आ गई है। उन्होंने अपने समय प्रचलित पद शैली न अपनाकर कविता सभा शैली को अपनाया, जो उनकी स्वच्छंद वृत्ति का सूचक है। बहुविकल्पीय प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य में आधार बनाया। श्रीमद् भागवत गीता के पुराण के कृष्ण को हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है। विद्यापति। उज्जवल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन? रूप गोस्वामी। श्री कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय माना जाता है? वैष्णव सहजिया संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? हित हरिवंश ने। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? चैतन्य संप्रदाय। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभ। अष्टछाप कवियों की संख्या कितनी है? 8। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया? गोसाई विठलनाथ। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? श्रीनाथ जी का मंदिर। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग कौ जहाज किसे कहा था? सूरदास। भक्तिमाल की रचना किसने की थी? नाभादास। चौराशे श्रवण के वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूर के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? नंददास। अनेकार्थक मंजरी की रचयिता कौन? नंददास। रस पंचाध्याय की रचयिता कवि कौन थे? नंददास। युगल शतक रचनाकार का नाम आता है? श्री भट्ट। रसखान की रचना जिनमें से कौन सी है? प्रेमवाटिका, दानलीला, सुजान रसखान। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य किस का अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है। राधा वल्लभ संप्रदाय निजवत संप्रदाय के संप्रदाय के सिद्धांतों का अद्वितीय हरिदास जी। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरिदास। स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? राधा वल्लभ संप्रदाय। राजस्थान के सलीमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? निम्बारका संप्रदाय। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? निम्बारकाचार्य। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैताद्वैतवाद। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा का माना जाता है? चंद्रवरदाई। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 478 ईस्वी। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसी का भाई माना जाता है? नंददास। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? शुकर क्षेत्र। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ध्रुवदास। इनमें कौन सा कवि मुसलमान है? रसखान। अमर गीत की रचयिता कौन है? नंददास। उद्धव गोपी संवाद के युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? ब्रह्म गीत काव्य परंपरा। उद्धव शतक रचनाएं किसने की? रत्नाकर। गोकुल समय गोपाल उपास यह पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास। किस कवि की गोमिया सर्वाधिक भावी है? सूरदास। निर्गुण कौन देश के वासी पद में किसका खंडन किया गया है? निर्गुण उपासना का। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? सूरदास। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में सकलित है? साहित्य लहरी। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगर ने किस स्थान पर माना है? सी ही। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सख्य भाव। सुर सागर चली किसी चली जाती हुई गीत का परंपरा का चाहे वह मौखिक रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। कथन किसका है? चाहे रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है यह कथन किसका है? चाहे रामचंद्र शुक्ल। जयपर दीनानाथ ढरे इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? पुष्टि मार्ग। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति में कौन सी है? रसपंचाध्याय। नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा किस ग्रंथ की रचना की है? रूपमंजरी। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? रस पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी। कौन सा ग्रंथ नंददास का है? नहीं है माधवानल कामन कंद कला। भ्रमर गीत का मूल स्रोत प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण? श्रीमद भागवत पुराण। सत्यनारायण कविरत्न भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ का? भ्रमर दूत। पशु मेरे नंद्राल यह पद किसका? मीरा भाई। मोर प्रकाशिर ऊपर राखियों गुंज की माल गले पहिराऊंगी यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान। प्रेम वाटक का रचनाकार कौन है? रसखान। रसखान का जन्म कब माना जाए? 1523 ईस्वी। या लकुटेरु कमरिया पर राज त्यों पुरकुट ताज डरो यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान। उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। सुरसागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? विठलनाथ। भक्तमार्ग की रचयिता इनमें से कौन है? नाभादास। कृष्ण गीतावली की रचयिता तुलसीदास। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने व्यक्ति कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की है? रसखान। नंदास की किस कृति में मग्न होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? रस पंचाध्याय। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया? रोला। ध्रुवदास की संप्रदाय के कवि राधा वल्लभ संप्रदाय। इन मुसलमान हरिजन पे कूट हिंदू वारिये भारत हिंदुजन यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? रसखान। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ। मीरा कांति समय किस मंदिर में अतिवत है? रणछोड़ मंदिर। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? राधा वल्लभ संप्रदाय। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क। संतन को कहाँ सीकर सुकाम यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? कुम्भनदास। इनमें से गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं थे सूरदास। श्रीमद भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं है? राधा का। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख अभियोग श्रृंगार? गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि? चैतन्य संप्रदाय। कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसने सहन की है? मीरा भाई। पुष्ट मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन से? वल्लभाचार्य। सूरदास किस रस का कोना कोना चाहता है? वात्सल्य रस। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विठलनाथ। संख्या की दृष्टि सर्वाधिक रचना कृष्ण भक्ति में किसकी है? ध्रुवदास। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया? लोकरंजक। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को यह पंक्ति किसकी है? मीरा भाई। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां किस कवि की है? नंददास। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द लिया है? पुष्टि। मीरा भाई की भाषा किस कोटि में आती है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। गोसाई विठलनाथ सिंह किस ग्रंथ की रचना की? श्रृंगार रस। नाभादास किस देव के उपासक थे? राम। ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? वल्लभाचार्य। गोसाई विठल नाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1515 ईस्वी।